संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 7 जून 2024 के बुलेटिन की सुर्खियां। गाजा में युद्ध जारी रहने से जानमाल के भारी नुकसान के साथ रोजगार और आजीविकाएं भी हुए ध्वस्त। बेरोजगारी दर पहुंची 80% के पास। म्यांमार में हिंसा में आई तेजी पर चिंता। युद्धरत पक्षों से संयम बरतने की अपील। अफगानिस्तान में सरेआम शारीरिक दंड के व्यापक प्रयोग पर रोक लगाने की पुकार। और खेतीबाड़ी व मछली कारोबार में प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग के बारे में सुनिएगा एक बातचीत शालिनी भूटानी के साथ, जो भारत में FAO की एक वरिष्ठ नीति विश्लेषक और परियोजना प्रबंधक हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ताज़ा समाचारों और मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट news.un.org/hi पर अवश्य आएं। और हाँ, मोबाइल डिवाइसेस पर भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है UN News। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने आगाह किया है कि गाजा में इसराइल हमास युद्ध भड़कने के 8 महीने बाद गुजर बसर के लिए संघर्ष कर रहे हताश परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हैं। UN एजेंसी के अनुसार गाजा में बेरोजगारी दर 80% के आंकड़े के पास पहुंच गई है। ILO ने शुक्रवार को जारी एक नई रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि हिंसक टकराव की वजह से फिलिस्तीनी रोजगार बाजार और गाजा पट्टी व पश्चिमी तट से इतर वृहद अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचा है। ILO के महानिदेशक गिल्बर्ट होंगबो ने इससे पहले गुरुवार को जिनेवा में विशेष अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा,
द लेबर मार्केट इन गाजा हैज लिटरली कोलैप्स्ड टुडे, गाजा इज इन रुइंस।
गिल्बर्ट होंगबो कह रहे थे कि आज गाजा में रोजगार बाजार बिल्कुल तबाह हो चुका है, आजीविकाएं चकनाचूर हो चुकी हैं और मुश्किल से काम मिल पा रहा है। श्रम अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ILO के महानिदेशक गिल्बर्ट होंगबो के शब्द। उधर मध्य गाजा के नुसीरत इलाके में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल पर बुधवार व गुरुवार की दरमियानी रात को एक इसराइली हमले में अनेक लोगों के हताहत होने पर गहरी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इसके अलावा युद्ध के कारण बेदखल हुए लोगों में हैजा और अन्य जानलेवा बीमारियां फैलने की चेतावनी भी जारी की गई है, क्योंकि उन लोगों को घातक कूड़े कचरे के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने आगाह किया है कि बढ़ते कार्बन उत्सर्जनों पर लगाम कसने के लिए जरूरी जलवायु कार्रवाई की दृष्टि से दुनिया एक बेहद अहम पड़ाव पर है। उन्होंने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा कि वैश्विक स्तर पर कदम उठाने की अभूतपूर्व आवश्यकता है, मगर समृद्धि और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अवसरों का भी ध्यान रखा जाना होगा। शीर्षतम UN अधिकारी ने कहा कि ये सच्चाई का सामना करने का क्षण है और समाधान अपनाए जाने होंगे। उन्होंने कहा कि जलवायु मामले में हम डायनासोर नहीं हैं, हम उल्कापिंड हैं, हम न केवल खतरे में हैं, हम खतरा भी हैं, मगर हम समाधान भी हैं। UN प्रमुख ने इस मौके पर यूरोपीय आयोग के कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा की एक नवीनतम रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार इस वर्ष मई का महीना इतिहास में सर्वाधिक गर्म साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने म्यांमार में हिंसा में आई तेजी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। UN प्रमुख ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के तहत आम लोगों के संरक्षण को प्राथमिकता देने और सामुदायिक तनाव और हिंसा की रोकथाम पर बल दिया है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफान दुजारिक ने इस सप्ताह महासचिव की ओर से एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल के दिनों में राखिन प्रांत और सगाइंग क्षेत्र में म्यांमार की सेना द्वारा किए गए हमलों की कठोर निंदा की है। इन हमलों में कई आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। म्यांमार के राखिन प्रांत में सेना और अलगाववादी अराकान आर्मी के बीच हिंसा में उछाल आया है, जिससे हजारों लोग बेघर हुए हैं। कई हमलों में अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय को निशाना बनाया गया है, जो पिछली कई पीढ़ियों से राखिन में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण नागरिकता हासिल नहीं है। 2017 में सरकारी सुरक्षा बलों के कथित उत्पीड़न की वजह से लाखों रोहिंग्या लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ली थी। यूएन प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिमी म्यांमार में राखिन जातीय समुदाय को निशाना बनाया जाना और रोहिंग्या का उत्पीड़न जारी रहना चिंताजनक है और ये सभी समुदायों की रक्षा किए जाने की जरूरत को रेखांकित करता है।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने एक नई रिपोर्ट में चिंता जताई है कि विषमतापूर्ण हालात, हिंसक टकरावों और जलवायु संकट के कारण बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि 5 वर्ष से कम उम्र के लाखों बच्चे खाद्य निर्धनता के शिकार हैं और उनके पास पोषक विविध आहार उपलब्ध नहीं है। बच्चों के पर्याप्त मानसिक व शारीरिक विकास के लिए सेहतमंद भोजन बहुत जरूरी है, मगर फिलहाल विश्व के अनेक हिस्सों में खाद्य वस्तुओं की महंगाई और जीवन यापन कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो अब भी कोविड-19 महामारी के असर से उबर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने अफगानिस्तान में सत्ताधीन अधिकारियों द्वारा शारीरिक दंड का व्यापक तौर पर प्रयोग किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके मद्देनजर तालिबान प्रशासन से शारीरिक दंड पर तत्काल रोक लगाने और स्थापित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित किए जाने का आग्रह किया गया है। कुछ और ब्यौरे के साथ सचिन गौड़।
यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने बताया है कि 4 जून को 63 महिलाओं और पुरुषों को अफगानिस्तान के सरेपुल नामक शहर में खेल के मैदान में सरेआम कोड़े मारे गए। उन लोगों पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे जिनमें घर से भाग जाना और नैतिक अपराधों के आरोप शामिल थे। लगभग 50 पुरुषों और 13 महिलाओं को 15 से 39 बार कोड़े मारे गए, जिसके बाद उन्हें अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल वापस भेज दिया गया। यूएन मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार शारीरिक दंड दिए जाने के इस घटनाक्रम को तालिबान अधिकारियों और सैकड़ों स्थानीय निवासियों की कथित मौजूदगी में अंजाम दिया गया। संगठन ने ध्यान दिलाया है कि शारीरिक दंड अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का स्पष्ट हनन है, जबकि अफगानिस्तान उत्पीड़न के विरुद्ध कन्वेंशन और सिविल व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र दोनों पर ही हस्ताक्षर करने वाला एक पक्ष है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का चुनाव किया है। ये 5 नव निर्वाचित सदस्य देश अगले वर्ष 1 जनवरी को पहले से मौजूद 5 अस्थायी सदस्य देशों अल्जीरिया, गयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन, स्लोवेनिया के साथ सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनेंगे। दुनिया भर में दैनिक जीवन में एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक, बोतलों व अन्य उत्पादों को लेकर जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। उसकी रिसाइकिलिंग पर काम किया जा रहा है और प्लास्टिक के उचित निपटान व सतत उपयोग के तरीके सुझाए जा रहे हैं। दिल्ली में यूएन न्यूज हिंदी की सहयोगी अंशु शर्मा ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO में नीति विश्लेषक व परियोजना प्रबंधक शालिनी भूटानी से कृषि उत्पादन में व्याप्त प्लास्टिक प्रदूषण के विभिन्न आयामों पर चर्चा की।
कृषि और खाद्य के क्षेत्र में आप और मैं उपभोक्ता हैं। हम ज़्यादातर कंज्यूमर्स को जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस दी जाती है वो कहा जाता है कि आप फल सब्जी खरीदने जाएं तो आप अपना प्लास्टिक का थैला मत इस्तेमाल करें, आप कपड़े का थैला इस्तेमाल करें, पर वो तो कंजम्पशन एंड पे है। प्लास्टिक के प्रदूषण से जो प्रोडक्शन के स्टेज पे है, जो जब हमारे फल सब्जियां और जो मछली में भी जो पकड़े जाती हैं उसमें क्या क्या प्लास्टिक इस्तेमाल होते हैं, उनकी जानकारी और उस पर एक विश्व स्तर पे एक ढांचा होने की आवश्यकता है, उसे रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब प्लास्टिक का प्रयोग कृषि उत्पादन के हर क्षेत्र में, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन हो, हर एक क्षेत्र में इतने प्लास्टिक्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो मल्च फिल्म्स हो, फॉडर के लिए साइलेज फिल्म्स हो, ग्रीन हाउस फिल्म्स, या जो नेट्स और बैग्स और सैक्स बोरियाँ जिसमें एग्रीकेमिकल्स पैक होते हैं, या फिर जो कीटनाशक प्लास्टिक की बोतलों में आते हैं, और ट्यूब्स और ड्रिप लाइंस जो इरिगेशन में इस्तेमाल होते हैं सिंचाई में, और ट्री गार्ड्स, रस्सियाँ। तो हर एक स्टेज पे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, पर वो कहाँ जाता है इस्तेमाल के बाद, वो कहाँ एकत्रित हो रहा है।
शालिनी भूटानी के साथ ये पूरी बातचीत हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता तो आपको मालूम ही है, news.un.org/hi। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, अब महबूब खान को अनुमति।